पेज नंबर 129। लंका में कहीं रंग है, कहीं प्रतिरंग है, कहीं विहंग है। बाहर भीतर चारों ओर बहुवर्णी रात छमाछम नृत्य कर रही है। सारे लीला व्यापार उसके ही कलाप हैं। चंद्र ज्योत्सना के नृत्य कलाप का यह अंतिम मंडल है। अंत में महाकवि कहता है, रात घूसर पांडुर होती जा रही है, पर आह अभी तक जानकी नहीं मिली। और वानर वीर चांदनी के अंतिम चरण में ही रावण के अंतापुर में प्रवेश कर जाता है। दो तिहाई रात तो लंका की विशाल और ज्योत्सना आहत नगरी में घूमते छानते खोजते बीत गई। अब इस महापुरी का केंद्र रावण के प्रसाद का अंतापुर शेष बचा है और वानर वीर बड़ी सावधानी से अंतापुर में प्रविष्ट हो जाता है। इसके बाद असंख्य द्वीपों के शतरंगी कलाप से छिलमिलिन विलास कच्छों का वर्णन करते समय महाकवि बाहर क्षीण होती हुई ज्योत्सना का एक बार भी नाम नहीं लेता कि कब उसका सोलहों श्रृंगार से युक्त श्वेत मयूर कलाप अस्त हो गया। कब वह डूब गई, कब लंका की चंद्राहत मुग्ध मनोदशा का अंध निद्रा में अवसान हो गया। अब कभी दूसरे प्रकार के मिजाज या मूड की सृष्टि करने में रत हो जाता है। वह ज्वलंत रूप सज्जा के मध्य दग्धता घर्षण और उच्छिष्टता का मूड रचने की चेष्टा करता है। रावण का अंतःपुर समुद्रम इव गंभीरम, समुद्रम इव निःस्वनम दुर्गम अतलोपम अंतःपुर है, जिसमें कोई पर पुरुष डूबे तो फिर थाह ना पा सके। कभी कभी वाल्मीकि का एक ही वाक्यांश बहुत बड़ा संकेत दे जाता है और तब शेष चित्र पाठक की कल्पना अपने आप पूरा कर लेती है। रावण को के अंतःपुर को समुद्रम इव गंभीरम, समुद्रम इव निःस्वनम कहकर वे दो एक श्लोकों में रीतिबद्ध ढंग से उपमा उपमेय समानता बताते हुए आगे बढ़ जाते हैं। पर रस प्रवण मन इस बिंब को कल्पना के धरातल पर ग्रहण करके रावण के अंतःपुर का अद्भुत दृश्य देखता है। रत्नाकर की तरह ही वह अंतःपुर प्रमाद रत्नों से भरपूर महोदधि की तरह वह ध्वनि प्रतिध्वनि युक्त नाद संकुल और अतल रहस्य है। और रावण के क्रुद्ध होने पर या कोई विशेष घटना घटने पर यह अचानक शांत मूक गिराबद्ध भी हो जाता है, जैसे मध्याह्न का शांत सागर हो। इसके स्वभाव में इसके अपने पूर्व के रत्नाकर, पश्चिम के सागर और दक्षिण के महोदधि तीनों समुद्रों की अभिव्यक्ति होती है। यह उनके मिलन के बिंदु पर जो स्थित है, जैसे समुद्र में खहराती हुई लहरें उठती हैं नाद की एवं अविराम गर्जन की घटा पर घटा तही भूत होती जाती है। उसी के ऊपर ऊपर दूर से बहती हवा का हू हू स्वर और दूरागत खींची ध्वनि सिटकारी भरती हुई फिर अंतिम क्षण में तीव्र सीटी जैसी ध्वनि सुनने को मिलती है। और इन सब गर्जन तर्जन ध्वनियों महाध्वनियों के अगल बगल समुद्री पंछियों का क्रेंकार उठता है। साथ ही कभी कभी उनके पीपी स्वर एवं उनके कोमल कलरव भी सुनाई पड़ते हैं। रह रह कर सब कुछ मिलाकर एक अद्भुत अंतर ध्वनन ऑर्केस्ट्रेशन का स्वाद मिलता है। पर इससे भी अद्भुत अंतर ध्वनन बजता है रावण के इस प्रतापशाली अंतःपुर में। चारों ओर नौकरों चाकरों का विविध कर्म कोलाहल शोरगुल है, पर उसी के मध्य कहीं नेपथ्य से गुरु गंभीर पखावच के साथ बजती वीणा के स्वर आ रहे हैं और गंधर्व कंठों से तालों का पद पाठ भी कड़क रहा है। यूं सुनने वाले को पता नहीं चल पाता है कि किस दिशा से कहाँ से यह ध्वनि आ रही है। किन्नरों का अभ्यास कच्छ किधर है, तो दूसरी ओर जाने पर राक्षस कविगणों के कंठों से प्रशस्त संस्कृत में रुद्रस्तव या स्वस्ति पाठ या कीर्तिगान के छंद पर छंद समुद्र तरंगवत गहराते हुए ज्ञात होते हैं, तो तीसरी ओर किसी गैले से किसी प्रमाद के नूपुर और कटी मेखला की झंकार उसके नृत्य शिक्षित पगों के साथ छमाछम एक ओर से दूसरी ओर निकल जाती है। सुनने वाले के मन में उस ध्वनि रूपा दृश्य नारी के प्रति एक कौतूहल जागता है, पर मात्र क्षण भर के लिए, क्योंकि अगले ही क्षण वह दूसरी ओर निकल गया रहता है, जहाँ अपने को अपश्रव्य शब्दों की धारा में गाली गलौज और चाकरों के कोलाहल के बीच छाती भर नहीं तो कमर भर धंसा पाता है। उसे लगता है कि वह अंतापुर में नहीं बल्कि समुद्र के किनारे की छाड़न या दलदल में फंसा है, जिसके कीचड़ में सरीसृप और मकर नक्र छख लोट पोट कर रहे हैं और पार्श्व से वायु विकल महोदधि की क्रुद्ध फूत्कार आ रही है। तो वाल्मीकि ने इस अंतापुर के लिए ठीक ही लिखा है, समुद्रम इव गंभीरम समुद्रम इव निश्वनम। यह समुद्रोपम अंतर्ध्वनन और कोलाहल तभी तक है जब तक रावण दरबार में पूजा गृह में या मंत्रणा गृह में है। सांध्य रुद्रोपाशन के बाद जो ही वह प्रवेश करेगा उसके आते ही आते सब कुछ शांत निशब्द सब कुछ तालबद्ध नृत्यबद्ध एवं अनुशासित। तब मारे भय के यह समुद्रोपम अंतःपुर निश्वन निशब्द हो जाएगा। मारुत इसी दुर्गम अतल अंतःपुर में धसा है, ऊब चूब हो रहा है, बाहर बाहर ज्योत्सनास्त तो हो गई है पर भीतर स्तंभ स्तंभ पर प्रदीप जल रहे हैं। अभी तक पांडुर वर्णी उदास श्री मात्र लावण शेष रामचंद्र की वधु सीता का पता नहीं चला। मारुति क्षण भर के लिए खिन्न हो जाता है। निष्फल श्रम निष्फल साहस निष्फल विक्रम। मारुति उन स्तंभों की चित्रकारी और मूर्ति टंकण की ओर दृष्टि देता है, यत्र तत्र सोने और चांदी के इहामृग भेड़िए सजे हैं। पांत पर पांत शिकारी को विदीर्ण करती भूखे कुत्तों की आकृति उकेरी गई है। अंगूर की लताओं में सांप चुनते हुए मयूर स्तंभों के टोड़ या पैनेल पर अंकित हैं। गवाक्षों पर कंकालिनी चामुंडा की मुख मूर्तियां बैठाई गई हैं। एक कतार में टमटमाती जीभ निकाले आकर्ण मुख फाड़े चमचमाते तांबे की स्वा पद प्रतिमाओं पर रोशनी झर रही है। उसकी चमक में उनके मुख और विकराल और तमतमाए हुए जान पड़ते हैं। क्रूरता रस की इन अभिव्यक्तियों को देखकर वानर वीर को अरुचि हो गई। किष्किंधा की पाठशाला में गुरुओं द्वारा डिंगल पिंगल छायावाद मायावाद आदि से मर्जित प्रक्षालित निरामिष शुद्ध फलाहारी रुचि को यह सब कुरूप लगा। इसी समय ध्यान उच्चता और उसकी नाक में भक्ष्य और पेय पदार्थों की सुगंधि प्रवेश करने लगी। उसे लगा कि यह गंध नहीं पिता का आदेश है। वानर श्रेष्ठ उसी दिशा में बढ़ता गया। अग्रहायण की एकादशी का अंतिम एकाद